आज की बात।
श्रोता कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय है भारत नियंत्रित कश्मीर के हालात। कश्मीर घाटी में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। जगह जगह पथराव की घटनाएं हो रही हैं, फायरिंग में लोगों की जानें जा रही हैं। इन परिस्थितियों के कारण पर्यटन तो पहले ही तबाह हो चुका है, व्यापार, शिक्षा और आम जीवन भी बुरी तरह प्रभावित है। आए दिन स्कूल और कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। हड़तालें, कर्फ्यू और प्रदर्शन, यही कश्मीर की वर्तमान तस्वीर है। हाल ही में लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए जिसमें फारूक अब्दुल्ला जीत गए, लेकिन मतदान मात्र 7% हुआ और चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा में कम से कम 9 लोगों की जानें चली गईं। चुनाव के समय जो स्थिति देखने में आई उसे देखते हुए कुछ टीकाकारों का कहना है कि भारत सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि कश्मीर की स्थिति को कैसे संभाला जा सकता है। कश्मीर में इस समय कानून और व्यवस्था की समस्या भी है और साथ ही भारत की निगरानी में जारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। उपचुनाव जीतने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार को खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार मानते हैं।
You don't think these boys have some grievance? Don't you think they have some grievance? Or are you just worried about the nation? Does the nation is concerned about them, their future? Where is the government today? When we left, we had 29% when I was defeated. Today you have got 7%. Who's to blame for this?
दुनिया में स्वर्ग की तस्वीर कहे जाने वाले कश्मीर को हिंसा ने वास्तव में नरक में बदल दिया है। मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खून बहता जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कश्मीर में बह रहे खून की चर्चा की। उन्होंने कश्मीर की स्थिति पर बयान दिया और कश्मीर के लोगों को टेररिज्म और टूरिज्म में से किसी एक को चुनने का न्योता दिया।
मैं कश्मीर घाटी के नौजवानों को कहना चाहता हूं, पत्थर की ताकत क्या होती है। एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसी कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं। मैं घाटी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके सामने दो रास्ते हैं जो आपके भाग्य को किस दिशा में ले जाएंगे। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। 40 साल हो गए, अनेक निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, किसी का फायदा नहीं हुआ। अगर लहूलुहान हुई तो मेरी अपनी प्यारी कश्मीर घाटी हुई है। ये खून का खेल 40 साल के बाद भी किसी का भला नहीं कर पाया है, लेकिन इसी 40 साल में अगर टूरिज्म को बल दिया होता तो आज पूरी दुनिया कश्मीर की घाटी के चरणों में आकर के बैठी होती। ये ताकत कश्मीर की घाटी में।
मगर कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का कहना है कि नरेंद्र मोदी का ये बयान कश्मीर की सच्चाई से बहुत दूर है।
वादे उन्होंने लोगों के साथ किए हुकूमत बनाने के बाद, जिसको वो एक होली डॉक्यूमेंट कहते हैं, अपना एजेंडा फॉर अलायंस, अगर उसी को उन्होंने पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए होते तो शायद ये नाराज़गी जो आप देख रहे हैं इसमें भी थोड़ी सी कमी आई होती। लेकिन बदकिस्मती से उस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करने के बाद उस पर अमल करने की कोई कोशिश जो है वो की नहीं गई और नतीजा आपके सामने है। आप जम्मू कश्मीर को दो ही ऑप्शन देते हो, टेररिज्म और टूरिज्म का, और उन लोगों से आप बात नहीं करते हो जो कि ना टेररिज्म में भरोसा रखते हैं लेकिन जिनका टूरिज्म में भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के मसले को एक सियासी मसले के तौर पर समझते हैं और जिनको एक सियासी हल चाहिए। जब तक उनसे बात नहीं की जाती तब तक ये मसला रहेगा ही। جموں کشمیر ریاست میں ہر علاقہ جو ہے وہ ٹورزم کا نہیں ہے. اب چلیے گلمرگ ہے, پہلگام ہے, سون مرگ ہے, دو تین اور علاقے ہیں جہاں ٹورسٹ آ جائیں گے, لیکن جو باقی جگہیں ہیں, جو باقی شہر ہیں جو ٹورزم کے نقشے پہ نہ ہیں, آج ہیں بھی نہیں, اور شاید ان کو ٹورزم پہ, ٹورزم کے نقشے پہ آپ لا بھی نہیں سکو گے, ان کا پھر کیا ہے؟ جب ٹورزم نہیں ہے تو پھر کیا, ان کو ہم صرف ٹیررزم کا راستہ دے رہے ہیں؟
بھارت کے گرہ منتری راجناتھ سنگھ نے بھی سنسد میں بولتے ہوئے کشمیر کی استھتی کے بارے میں کہا کہ وہاں پاکستان دوارا گمراہ کیے گئے لوگ پاکستان سے پیسے لے کر پتھر بازی کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آتنکواد کا سینا اور سرکشا بل اچت روپ سے جواب دے رہے ہیں.
سدن ہی نہیں سارا دیش اس بات سے اچھی طرح پرچت ہے کہ پاک اسپانسرڈ انفلٹیٹرز اور پاک اسپانسرڈ ٹیررسٹ برابر جموں کاشمیر میں دہشت کا ماحول وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں یہ مانتا ہوں کہ جموں اور کاشمیر میں ہی وہ دہشت پیدا نہیں کرنا چاہتے, اتوا کیول جموں اور کاشمیر کو ہی ڈسٹیبلائز کرنے کی وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ آتنکوادی پورے بھارت کو ہی ڈسٹیبلائز کرنے کی ان کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے. اور میں سدن کو یہ اوگت کرانا چاہتا ہوں, اور ہم سب کو اس بات کا ناز بھی ہونا چاہیے اپ سبھاپتی مہودے, کہ آتنکوادیوں کو جس طریقے سے جواب دیا جانا چاہیے اسی طریقے سے اسی لحظے میں ہمارے سینا کے اور سرکشا کے جوان ان کو جواب دے رہے ہیں. بگت کچھ مہینوں سے ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے, اور اپ سبھاپتی مہودے ٹرینڈ یہ چلا ہے کہ جب بھی ہمارے سینا کے اور سیکورٹی فورسز کے جوان آپریشن پرارمبھ کرتے ہیں اس سمے گاؤں کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں, کچھ نوجوان وہاں پر آ جاتے ہیں اور سیکورٹی فورسز کے اوپر وہ پتھر بازی کرنا وہ پرارمبھ کرتے ہیں. لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے کشمیر کا نوجوان جو بھی اسٹون پیلٹنگ کرتا ہے وہ کچھ ایسی فورسز ہیں, اور وہ بھی فورسز پاک اسپانسرڈ ہیں جن کے دوارا وہ گمراہ کیا گیا ہے. میں تو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کشمیر کے نوجوانوں سے, کرپیا پاکستان کے بہکاوے میں نہ آئیں, ان کے دوارا برابر بھارت کو ڈسٹربلائز کرنے کی اس پرکار کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. اور میں یہ بھی سرن کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ اس بھیڑ کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو پاکستان میں کچھ ایک گروپ ہے ایسا سوشل میڈیا کے مادھیم سے ڈیفرنٹ اپلیکیشنز کا پریوگ کر کے یہ برابر بھیڑ کو اکٹھا کرنے کی یہ کوشش کی جاتی ہے, جس میں واٹس ایپ اور فیس بک ان سب ساری چیزوں کا پریوگ کیا جاتا ہے. اور جیسا میں نے بتلایا کہ یہ گروپ جو سوشل میڈیا کو آپریٹ کرتا ہے وہ پاکستان میں ہی یہ استھت ہے. اور میں یہ بھی جانکاری دینا چاہتا ہوں اپ سبھاپتی مہودے, جہاں تک آتنکواد کا سوال ہے, آتنکواد سے جیسے نپٹنا چاہیے ویسے آتنکواد سے ہمارے سینا کے اور سرکشا کے جوان نپٹیں گے.
اس بیچ انیک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں جن میں بھارتی سینا اور سرکشا بلوں دوارا کشمیری لوگوں کے ساتھ کیے جا رہے ہنسک برتاؤ کے بھیانک درشیہ تھے. ایک ویڈیو میں یہ دیکھا گیا کہ سینا نے اپنی جیپ کے آگے فاروق احمد ڈار نامک کشمیری یوا کو مانو ڈھال کے روپ میں باندھ رکھا ہے اور اعلان کر رہی ہے کہ پتھر بازوں کا یہی انجام ہوگا. وہیں ڈار کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی پتھر بازی نہیں کی. اس پرکار کے ویڈیو بھی وائرل ہوئے جن میں بھارتی سرکشا بلوں پر استھانیہ لوگ حملہ کر رہے ہیں. ان حالات میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ حالات اور ادھک نہ بگڑیں. بھارتی گرہ منتری کے اس بیان سے کہ کشمیر میں پتھر بازی پیسے لے کر اور پاکستان کے اشارے پر ہو رہی ہے, جموں کشمیر کے پورو مکھیہ منتری عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ اس سے سہمت نہیں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ سمبھو ہے کہ کچھ لوگوں نے پیسے لیے ہوں, لیکن ہزاروں یوا اور اسکولی بچے جو پتھراو کر رہے ہیں وہ سب پیسے کی خاطر نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی بھاوناؤں کے تحت ایسا کر رہے ہیں.
کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں ہزاروں میں لوگ پتھر پھینک رہے ہیں ان میں سے کچھ پیسے کے لیے بھی پھینک رہے ہوں گے, لیکن یہ کہنا کہ سب کے سب جو ہیں وہ پیسوں کے لیے پھینک رہے ہیں, تو مجھے بتائیے نا پھر ڈیمونیٹائزیشن کے بعد یہ سلسلہ رکا کیوں نہیں؟ آپ جب ہمیں کہہ رہے تھے کہ ڈیمونیٹائزیشن کے نتیجے میں نہ ٹیررزم ہوگا تو نہ پتھر بازی ہوگی, نہ ٹیررزم میں کمی آئی ہے نہ پتھر بازی میں کمی آئی ہے, تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ یہ سارا صرف پیسے کا کھیل نہیں ہے. ہاں بے شک میں یہ اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ شاید ان ہزاروں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پیسوں کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ان میں وہ بھی لوگ ہیں جو جذبات کے لیے کر رہے ہیں, जो अपना भविष्य जो है वो इस मुल्क के साथ नहीं देखते हैं, और उस चीज़ को बदलाने के लिए ये लोग पत्थर फेंकने के रास्ते पे उतर आए हैं।
समस्या यही है कि कश्मीर में हिंसा से भारी तबाही हो रही है, घाटी का हर भाग इससे बुरी तरह प्रभावित है, और इसका आभास जहां अन्य लोगों को है वहीं कश्मीर में रहने वालों को सबसे ज़्यादा इसके नुकसान का आभास हो रहा है, लेकिन फिर भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का प्रभावित होना और उनके भविष्य का इस तरह से नकारात्मक घटनाओं की जद में आना स्थानीय लोगों के लिए पीड़ादायक है। टीकाकार ये मानते हैं कि केंद्र सरकार को कश्मीर में सभी स्टेक होल्डरों से बात करनी होगी, वहाँ के हालात को पूरी तरह समझकर रणनीति बनानी होगी। ये कह देना कि सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है उचित नहीं है। स्थानीय मामलों के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जम्मू और कश्मीर 5 प्रकार के भागों पर आधारित है। एक तो गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू के पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूसरा मुजफ्फराबाद का पंजाबी स्पीकिंग क्षेत्र है जो पाकिस्तान के साथ है। भारत के पास कश्मीर का जो हिस्सा है उसमें भी 3 भाग हैं। एक जम्मू है जो हिंदू बाहुल क्षेत्र माना जाता है, कश्मीर मुसलमान बाहुल इलाका है जहां कुछ पंडित सिख और गुज्जर भी आबाद हैं। इसके अलावा लद्दाख का इलाका है जहां मुसलमान और बुद्धिस्ट हैं। ये सारे लोग बहुत लंबे समय से मिलजुल कर शांतिपूर्वक और समृद्ध जीवन बिताते आ रहे थे और सब कश्मीरियत के सूत्रधार से जुड़े हुए थे, लेकिन हालात खराब होने के बाद समस्याएँ बहुत जटिल रूप धारण कर गईं। इस समय ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि घाटी में युवा वर्ग प्रदर्शनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह नकारने पर तुला हुआ है। लोगों में ये विचार बहुत तेज़ी से पनप रहा है कि राज्य की महबूबा मुफ्ती सरकार आरएसएस और भाजपा के लिए घाटी के दरवाजे खोल रही है, अर्थात कश्मीरियों को बांटने और उन्हें आतंकित करने के आरएसएस एजेंडे में मदद कर रही है। इस विचार का जमकर प्रोपेगंडा किया जा रहा है। इस बीच राजस्थान और हरियाणा सहित अनेक क्षेत्रों में चरमपंथी हिंदू संगठनों ने गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों पर हमले किए जिनमें कई लोगों की जानें चली गईं। इससे पहले भारत की कई यूनिवर्सिटियों में कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की घटनाएं हुई। इस सब का भी कश्मीर की स्थिति पर निश्चित रूप से असर पड़ा। ये कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतने के लिए प्रभावी कदम उठाने का समय है। डराकर और आतंकित करके समस्या को हल नहीं किया जा सकता।